डार्क क्लब की नेक्स्ट एपिसोड पेश खिदमत है। और फिर इससे पहले के श्री उठती इमरान की डाल तेजी से हरकत में आई और उसके बूट के टोक की जरब उसकी कनपट्टी पर पूरी कुवत से पड़ी। जरब इमरान ने मखसूस पॉइंट पर मारी थी, इसलिए एक ही जरब उसके लिए काफी साबित हुई और उसके हाथ पैर सीधे होते चले गए, वो बेहोश हो चुकी थी। उसके बेहोश होते ही इमरान उस पर झुका, वो उसकी तराशी देना चाहता था कि उसे बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और इमरान जी आवाजें सुनते ही बिजली की सी तेजी से उछला और दूसरे दम वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ उसी सोफे के अकब में जा गिरा, जहां चंद्र में पहले श्री का रिवॉल्वर जा गिरा था। रिवॉल्वर सोफे के पीछे मौजूद था। अरे कहां गया वो, यहां तो श्री बेहोश पड़ी हुई है। दरवाजे से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और इमरान मुस्कुरा दिया। श्री के रिवॉल्वर पर उसकी गिरफल सख्त हो गई थी, उसे ढूंढना पड़ेगा। बस एक और आवाज सुनाई दी, फैल जाओ, पूरी कोठी में फैल जाओ, जहां वो नजर आए गोली मार दो। अब हम कोठी के अंदर ही करण फरीदी का इंतजार करेंगे, पहली आवाज ने कहा और इमरान को भागते हुए कदमों की आवाजें दरवाजे से बाहर जाती सुनाई दी। इमरान ने सोफे की ओर से देखा तो उसने गंजे क्राफ्ट को श्री पर झुके हुए पाया। उसका मुंह उसी सोफे की तरफ था जिसके पीछे इमरान छुपा हुआ था, लेकिन वो चौके झुका हुआ था, इसलिए उसकी गंजी टांट एंड इमरान के सामने थी। इमरान सोफे के पीछे से उठा और फिर उसने पूरी कुवत से क्राफ्ट की गंजी टांट पर चपत मारी और बिजली की सी तेजी से दोबारा सोफे के पीछे छुप गया। चपत खाकर क्राफ्ट डकराता हुआ बुरी तरह उछला। वो लट्टू की तरह घूमकर कमरे में इधर उधर देख रहा था, लेकिन जाहिर है उसे वहां कोई नजर आता तो वो उसे देखता। अलबत्ता उसकी नजरें अब इस सोफे पर जमी हुई थी जिसके पीछे इमरान था। अब जाहिर है इतना अहमक तो वो ना था कि पोजीशन को ना समझ सकता, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसका सर इसी सोफे के सामने ही झुका हुआ था। उसने बड़ी फर्ती से रिवॉल्वर निकाला, रिवॉल्वर पर सेंसर फिट था, वो शायद कोठी में सेंसर लगे रिवॉल्वर ही इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि शोर ना हो और बाहर मौजूद ब्लैक फोर्स के रुकन ना आ जाए। क्राफ्ट श्री के जिस्म को फड़ांग कर आगे बढ़ा और फिर एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़े उसने दूसरा हाथ सोफे की तरफ बढ़ाया और उसी दम में सोफा खुद ब खुद हवा में उछला और क्राफ्ट को देता हुआ दूसरे सोफे के ऊपर जा गिरा। क्राफ्ट का ऊपर वाला जिस्म दूसरे सोफे पर गिरा और इमरान के सामने वाला सोफा उसके धड़ के ऊपर रिवॉल्वर वाले हाथ उसके हाथ से निकल गया था। इमरान सोफे को फेंकते ही बिजली किसी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर उछलकर एक तरफ हटा। वो सोफा दोबारा उड़ता हुआ अपनी पहली जगह पर आया और इसी दम इमरान का हाथ हरकत में आया और उसके हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का बट सोफे से उठते हुए क्राफ्ट की गंजी खोपड़ी पर पूरी कुवत से पड़ा। क्राफ्ट झटका खाकर नीचे गिरा, उसकी शफाफ और चकनी खोपड़ी पर निकलने वाले खून से फूल सा बना। दूसरे दम में इमरान की दांत हरकत में आई और झटके से उठने वाला क्राफ्ट की कनपट्टी पर उसके बूट की जरब पूरी कुवत से लगी। फिर तो इमरान की दोनों दांतें किसी मशीन की तरह हरकत में आ गईं। क्राफ्ट ने अपनी ताकत और फुर्ती से बार बार उठने की कोशिश की, अपने आप को जरबों से बचाने की कोशिश की, लेकिन इमरान की दांतें ना सिर्फ मैकेनिकी अंदाज में हरकत कर रही थी बल्कि उनका निशाना भी बेखता था और चंद ही डबों में क्राफ्ट ने हाथ पैर छोड़ दिए, वो शीरी की तरह बेहोश हो चुका था। इमरान ने उसे घसीट कर श्री के साथ लटका दिया, फिर उसने क्राफ्ट का भी रिवॉल्वर उठा लिया और दरवाजे की तरफ था। साम साम इधर आओ, इमरान ने दरवाजे की ओर से होकर क्राफ्ट के ढांचे पर चिशकर कहा और दूसरे डर में दौड़ते हुए कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ी। इमरान दरवाजे की साइड में खड़ा हुआ था, आने वाला दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ ही था कि इमरान का हाथ हरकत में आया और साम की गर्दन की पुश्त पर इमरान की हथेली पूरी कुवत से लगी और साम का राजता हुआ क्राफ्ट और श्री के जिस्मों पर मुंह के बल ओंधा जा गिरा। वो एक बार पलटा लेकिन फिर बेहिस्सो हरकत हो गया, उसका असामी निजाम मफलूज हो चुका था। इमरान ने उसे भी घसीट कर एक तरफ डाल दिया। उसने इन दोनों को ऐसी जगहों पर डाला था कि दरवाजे की सीध से वो नजर न आ सकते थे, सिर्फ श्री का जिस्म ही नजर आ सकता था। अब इमरान के ख्याल के मुताबिक तीन मर्द और एक औरत बाकी रह गई थी। इमरान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और उसने अंदर से ही क्राफ्ट के अंदाजे में चीख कर कहा, तुम सब पिछले कमरे में छुप जाओ, कर्नल फरीदी आ रहा है, कमरे के अंदर छुप जाओ, जाकी जैकफी मार्टन और समका चारों छुप जाओ कमरे के अंदर। अच्छा मास, बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी और फिर मुख्तलिफ सिमतों से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और पिछले कमरे की तरफ बढ़ गई। इमरान ने जानबूझकर पिछले कमरे का कहा था क्योंकि इस कमरे का एक ही दरवाजा था और वो दरवाजा बैरूनी फाटक की सीध में था। वहां से फाटक साफ नजर आता था, इसलिए इमरान को इदम था कि इस कमरे में छुपने से वो घबराएंगे नहीं और ना ही इन्हें कोई शक पड़ेगा। उनके पिछले कमरे में जाते ही इमरान तेजी से ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकला और ओट लेता हुआ पिछले कमरे की तरफ दबे पांव बढ़ता गया। वो साइड से होकर आगे बढ़ रहा था ताकि इनकी नजरों में न आ सके। सनसर लगा रिवॉल्वर उसके हाथ में था। पिछले कमरे की साइड में पहुंचकर वो आस्था से दीवार के साथ लगकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का एक पट बंद था जबकि दूसरा पट खुला हुआ था। इमरान ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और झटके से दरवाजा बंद करके हैंडल दबा दिया। कक, दरवाजा क्यों बंद हुआ? अंदर से एक हैरत भरी आवाज सुनाई दी, घबराओ नहीं, अंदर खड़े रहो, मैंने एक प्लान बनाया है। अगर फरीदी हमसे बच गया तो वो इस कमरे में आएगा और उस वक्त तुम उसे खत्म कर सकते हो। इमरान ने क्राफ्ट के लहजे में सरगोशी करते हुए कहा और साथ ही उसने बाहर से चटखनी चढ़ा दी और फिर तेजी से भागता हुआ वापस ड्राइंग रूम की तरफ गया। ड्राइंग रूम पर एक नजर डालता हुआ वो एक गैलरी में दौड़ता हुआ अकबरी कमरे में पहुंचा जहां कर्नल फरीदी की लेबोरेटरी थी। फरीदी भी इमरान की तरह मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने का शौकीन था, इसलिए उसने कोठी के अंदर ही एक मुकम्मल लेबोरेटरी कायम कर रखी थी और इमरान सैकड़ों बार फरीदी के साथ इस लेबोरेटरी में आता रहा था। उसने लेबोरेटरी का दरवाजा खोला और चंद दिनों बाद उसे अलमारी में अपने मतलब की चीजें मिल गई। उसने एक पंप निकाला, उसके साथ बनी हुई कैफ में एक शीशी का महरोल डाला और एक शीशी और वो पंप उठाकर वो भागता हुआ वापस इसी कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें क्राफ्ट के चारों साथी मौजूद थे। होशियार रहना, फरीदी अब पहुंचने ही वाला है, सांप और मैं इसका इस्तेमाल ड्राइंग रूम में करेंगे। इमरान ने दरवाजे के पास पहुंचकर एक बार फिर क्राफ्ट के दर्जे में सरगोशी करते हुए कहा और साथ ही उसने पंप की नलकी का मुंह तारे के सुराख में फंसा दिया और दूसरी शीशी का ढक्कन खोलकर इसमें से चंद कतरे कैफ का ढक्कन खोलकर इसमें मौजूद महरोल में डाला और जल्दी से ढक्कन दोबारा टाइट कर दिया। दूसरे महरूर के पहले महरूर से मिलते ही कैफ के अंदर से हल्के हल्के नीले रंग की गैस बनना शुरू हो गई। जब पूरी कैफ गैस से भर गई तो इमरान ने जल्दी से पंप दोबारा शुरू कर दिया और कैफ में मौजूद गैस नलकी से होकर कमरे के अंदर पहुंचना शुरू हो गई। होशियार होना, इस बार इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, यस बास, आप फिक्र न करें। फरीदी को आने ने अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी और इमरान मुस्कुरा दिया, अरे अरे मेरा दम घुट रहा है। अचानक एक नस्वानी आवाज सुनाई दी और फिर किसी के गिरने का धमाका सुनाई दिया। इमरान ने पूरी गैस अंदर मुंतकल कर दी, अरे हाँ मेरा भी। इस बार दो आवाजें इकट्ठी सुनाई दी और फिर जके बाद देखने फर्श पर गिरने के तीन धमाके सुनाई दिए और मजीद चंद लम्हे इंतजार करने के बाद इमरान ने पंप एक तरफ रखा और रिवॉल्वर को हाथ में पकड़कर दरवाजे की चटकनी खोली और फिर धक्का देकर उसने दरवाजा खोल दिया और खुद तेजी से एक तरफ हट गया। गैस के बबखे तेजी से बाहर निकलने लगे। इमरान सांस रोके एक तरफ खड़ा था। जब कुछ लम्हे गुजर गए तो उसने आहिस्ता से सांस लिया। अब गैस का दबाव खत्म हो गया था। उसने एक लंबा सांस लिया और फिर वो कमरे में दाखिल हो गया। उसने बटन दबाकर बत्ती जला दी। कमरे की दीवारों के साथ क्राफ्ट के चार साथी फर्श पर ढेर पड़े थे। उनके रिवॉल्वर अभी तक उनके हाथों में पकड़े थे, अंदर गैस अभी तक मौजूद थी। इमरान ने एग्जॉस्ट का बटन दबा दिया। ताकतवर एग्जॉस्ट के चलने के चंद मिनट बाद ही गैस गायब होगी और कमरे की फजा बिल्कुल नॉर्मल होगी। इमरान बाहर आ गया, उसने पंप उठाया और दोबारा डिबैटरी की तरफ बढ़ गया। डिबैटरी में शीशी और पंप को वापस उनकी जगहों पर रखकर वो बाहर आया और उसने डिबैटरी के दरवाजे को पहले की तरह बंद कर दिया। वहां से निकलकर वो तेजी से कोठी में घुमा। उसे अब चौकीदार की फिक्र थी क्योंकि फरीदी का मुलाजिम जो पहले हमले में जख्मी हो गया था अभी तक अस्पताल में था और फरीदी ने उसकी सेहत जाबी तक और कोई मुलाजिम न रखा था क्योंकि वो कोठी के अंदर किसी और आदमी को डाना मुनासिब न समझता था। और फिर जल्द ही इमरान को फाटक के पास ही चौकीदार की लाश पड़ी हुई नजर आ गई। उसे एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया गया था। उसके सीने में एंड दिल के मकाम पर दो गोलियां मारी गई थी और वो बेचारा ठंडा हो चुका था। क्राफ्ट वगैरह ने उसे इस तरह छुपाया था कि जब तक उसे खास तौर पर तलाश न किया जाता उसकी तलाश मुमकिन न थी। इमरान समझ गया कि उसे सरसर लगे रिवॉल्वर से हरा किया गया है। तब भी फायरिंग की आवाज उसे सुनाई ना दी थी। इमरान तेजी से पलटा। अब उसके जहन में एक और खिचड़ी पकड़ी थी। उसने ड्राइंग रूम में मौजूद श्री क्राफ्ट और शाम के बेहोश जिस्मों को बारी बारी उठाया और इसी पिछले कमरे में लाकर एक तरफ लटा दिया जहां पहले उनके साथी बेहोश पड़े हुए थे। और फिर वो स्टोर से एक बड़ी सी रस्सी निकाल कर लाया और उसने इन सब के हाथ और पैर अच्छी तरह बांध दिए। उसे नहीं मालूम था कि कर्नल फरीदी और हमीद किस वक्त लौटेंगे, इसलिए वो कोई रिस्क न लेना चाहता था। इन्हें बांधने के बाद उसने इनकी जेबों से रुमाल निकालकर शीरी क्राफ्ट और शाम के हलकों में ठोंस दिए। उसे ज्यादा इनकी तरफ से खतरा था क्योंकि गैस से बेहोश होने वालों के मुताबिक तो वो जानता था कि इन्हें 3-4 घंटों से पहले होश नहीं आ सकता। और फिर वो बाहर निकला और दरवाजे को बाहर से बंद करके वो वापस ड्राइंग रूम में आया। उसने उल्टे पड़े हुए सोफों को दोबारा सेट किया। करीन पर एक जगह क्राफ्ट की गंजी खोपड़ी से निकलने वाले खून के धब्बे मौजूद थे। इमरान ने सेंट्रल टेबल को जरा सा खिसकाया और धब्बों के ऊपर रख दिया। अब टेबल हटाए बगैर वो धब्बे नजर न आ सकते थे। और फिर वो बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। जारी है।